ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 82। श्री भगवान उवाच माभैष्ट बालं तपसः दुरत्ययात् निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतः हि वः प्राणनिरोधः आसीत् औत्तानपादी मयि संगत आत्मा। श्री भगवान उवाच माभैष्ट बालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोधासीत् औत्तानपादीं मयि संगतात्मा। श्री भगवान उवाच माभैष्ट बालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधामः यतो हि वः प्राण निरोधासीत् औत्तानपादीर्मयि संगतात्मा। श्री भगवान उवाच माभैष्ट बालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोधासीत् औत्तानपादीर्मयि संगतात्मा।
माभैष्ट बालं तपसो दुरत्यया
से दुरत्ययात् दृढ़ निश्चय निवर्तयिष्ये, रोकने के लिए कहूंगा प्रतियात् तुम जा सकते हो स्वधाम अपने घर, यतः जिससे ही निश्चय ही वह तुम्हारा प्राण निरोधः, प्राण वायु का अवरोध आसित हुआ। उत्तानपादी राजा उत्तानपाद के पुत्र के कारण मैं मुझको संगत आत्मा, मेरे विचार में पूरी तरह तल्लीन। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो तुम इससे विचलित न हो, यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास प्रक्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तात्पर्य, यहां पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मा का अर्थम मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया गया है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं, और ऐसे ही एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहां पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए हैं। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। मायावादी दार्शनिकों के इस कथन से यह निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, अपितु परमात्मा भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। भगवान को प्रसन्न कर लेने पर सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस तरह की पौधे की जड़ को सींच कर टहनी पत्ती इत्यादि तुष्ट किया जाता है, यदि मनुष्य भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है। क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने की भय से आशंकित थे, किंतु भगवान ने इस से विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार नहीं करने जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुष्कंध के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन नामक आठवें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सगणा रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीशाकान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे श्री भगवान वाच मा भैष्टवालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधामो। यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् अक्तानुपादेर मयिर संगता मा। अनुवाद फिर से देखो। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानुपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास प्रक्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उबरा जाओगे। श्री प्रभुपाद यहाँ संगतात्मा का अर्थ स्पष्ट करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को एक ही आदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याहि माम नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसि। भगवान में हमेशा मन बनाए रखना चाहिए। तो मत गति ना अंतरात्मना, भगवान के अंतरात्मा यानी कि भगवान स्वयं में भक्त की आत्मा ओतप्रोत हो जाती है। मत गति ना अंतर, अंत यानी कि भगवान के अंदर, भगवान के बाहर वो भक्त नहीं रह सकता। भगवान के अंतर में किसी न किसी स्वरूप से वो समाया होता है। यहां मायावादी लोग कहते हैं कि देखो ध्रुव महाराज ने तपश्चर्या की भगवान की और वो भगवान में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनको तो अपनी शुद्ध बुद्ध भी नहीं रही, लेकिन वो अंतर्गल हो गए। अंतर्गल यानी अंदर समाविष्ट हो गए, यानी कि ध्रुव महाराज का अपना अस्तित्व नहीं रहा। ये संगतात्मा, संग यानी एसोसिएशन, संग का अर्थ है सहवास, सहवास यानी कि साथ में रहना। असंग का शब्द है त्याग करना, असंग त्यागो सतो वृत्ते शब्द। तो संग असंग की ये जो परिभाषा है और उसमें अर्थघटन जो यदि करते हैं तो मायावी मायावादी तुरंत बन जाते हैं। अर्थघटन करने का मना, सीधा शब्द का अर्थ हमें पकड़ना चाहिए। उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी ने कहा कि सचमुच जो भौतिकताएं हैं उसका असंग होना चाहिए, उसका संग नहीं। लेकिन ये तो हमारी आसपास बसी है, उसका क्या? और आप कहते हैं कि हम अंदर रहते भी ये उसका संग होते हुए भी असंग की भावना कैसे रखें? हवा चाहिए, पानी चाहिए, सारी भौतिकता है। यदि इसमें किसी की भी अपूर्ति हो तो हम भयभीत हो जाते हैं, जैसे देवताओं भी भयभीत होकर वो श्वास नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए भयभीत होकर अपने प्राण की रक्षा के लिए भगवान के पास जुड़े। प्राण की रक्षा भगवान तो करते ही है, नमे भक्त प्रणश्यति, फिर भी ये हम भूल जाते हैं। तो प्राण की रक्षा के लिए भगवान के पास दौड़ने की क्या आवश्यकता? वो करते ही, क्योंकि ये प्राण यानी कि क्या अंतरात्मा कभी नष्ट होता नहीं है, न जायते न म्रियते वा। तो ये स्थिति का स्पष्टीकरण ये शब्द द्वारा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त लोग कभी एकाकार होने की भावना रखते ही नहीं। एकाकार होना यानी कि अपना अस्तित्व मिटा देना या स्वयं भगवान बन जाना बराबर होता। तो इसके लिए हमारी सारी जो शिक्षा पद्धति है उस पर जो संग की भावना, भौतिक संग की भावना को नष्ट करने के लिए बहुत चालाकी से काम करना पड़ता है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर। ये सारे वेग हैं, वेग यानी प्रचंड शक्ति धराने वाले भौतिक परिबल है, बल यानी कि ताकत। ये इन चीजों में भगवान की ये भौतिक शक्ति की ताकत दिखाई देती है। तो इन पर ही हम यदि नियंत्रण करें तो बहुत बढ़िया ढंग से हम भगवान में हम मन लगाकर रह सकते हैं। दुनियादारी का पालन करके हम भगवान के पास नहीं जा सकते। दुनियादारी का पालन करके हम भगवान के पास नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वो तो संग है, यहां संग त्याग करने को कहा। संग और असंग की भावना मन में बनी रहती है, क्योंकि वह संकल्प और विकल्प के बारे में हमेशा रचा पचा रहता है। संकल्प में मुझे ये चाहिए, विकल्प में चलो नहीं मिलता तो मैं दूसरा विकल्प ढूंढूं, दूसरा उपाय ढूंढूं। लेकिन भौतिक अवस्था का संग हमेशा बना रहता है, मन में ताकत नहीं होती कि भौतिक संग छोड़ सके कभी भी। इसलिए भगवान ने पर्याप्त बुद्धि दी होती है। जब मन से और सूक्ष्मतर रूप से आत्मा को व्याप्त है, आत्मा के नजदीक बुद्धि होती है, ये बुद्धि कभी नहीं गंवा देनी चाहिए। ये यदि बुद्धि चली गई तो सत्यानाश हो गया, समझ। बुद्धि नाश हो प्रणश्यति। तो ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम जैसे जंगल में गए, जीवा वेग और उदर वेग पर काबू ले लिया। यानी कि महल में जो अच्छे पकवान मिलते थे वो उसका त्याग करके, बंदरों जो खाते थे कपिष्ठ इत्यादि खाने लगे, ज्यादातर मनुष्य नहीं खाते, ऐसा खुराक खाने लगे, वो भी 3 दिन में एक बार। और 1 महीना तक चलते रहे, दूसरे महीने में वो भी त्याग कर दिया और क्या खाया, पत्ते। फल भी नहीं बोला, पत्ते ही खाए। फल खाते थे तो और भी ठीक रहता, लेकिन नहीं। मधुबन में कौन से फल होते थे बताओ, होते ही नहीं थे। और 3rd महीने वो भी 6-6 दिन का अंतर बढ़ गया। पहले महीने में 3 दिन के अंतर में खाते थे, 2rd महीने में पत्ते भी खाए तो 6-6 दिन के बाद, बाद में सिर्फ पान, वो भी 9-9 दिन। इसी तरह उदर वेग और जिह्वा वेग पर कंट्रोल ले लिया, बाकी तो आसान हो जाता है। हमें तो वही दिक्कत आती है। सही, यहां इडली सांभर बनता है, सांभर में नमक ही भूल गए तो हम क्या क्या नहीं कह देते हैं, चुपचाप खा नहीं लेते, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि तुरंत वाचो वेग भी खत्म हो जाता है, और हलवाई को या कोई भी जो पकाता है रसोई को ऐसा ही बोल देते हैं। इसमें मन मनोवेग भी इतना पीछे पीछे घसीटता है, इतनी गर्ता में फेंक देता है कि ओ हम बाकी का तो रहा ही क्या। तो ध्रुव महाराज ने ये सारे 6-6 वेग इसी तरह पेट के द्वारा जीत लिए, पेट के द्वारा जीत लिए, बाकी आसान है। जिसने पेट पर नियंत्रण जमाया, जीवा पर नियंत्रण जमाया, तो मन का भी वेग, उपस्थ का वेग भी ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसी तरह दूसरे और तीसरे श्लोक में भी उपदेशामृत में ये कहा है कि कैसे ये वेद को समझे और उसके लिए कौन से प्रयत्न करने होते हैं। तो 6 चीज अपनाओ, 6 चीजों का त्याग करो। कौन सी 6 चीज अपनाने को पड़ते हैं, उत्साह, निश्चयात, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना। तो यहां ऐसा करने के लिए निश्चयात्मक भाव ध्रुव महाराज का था कि नहीं, यही बताते कि ऐसे निश्चयात्मक भाव ये पहले से ही उसमें जमा था। ये करूं चाहे उसे बाल हट कहो राज हट कहो जो भी हट हठिला बालक होता है लेकिन ये हट में कितना निश्चय होता है। हट लेना है तो अच्छे के लिए हट लो, परेशान करने के लिए हट नहीं ली जाती। परेशान करने के लिए हठ योगी नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हठ लेना बहुत आवश्यक है। लोग भक्त को हठी ले कहते हैं लेकिन सचमुच भक्तों की संगत में जब सभी चार नियमों का पालन करते हैं और इसका परिणाम रूप अपना उत्साह इत्यादि सब कुछ दूसरे लोगों को भी बताते हैं तो उसकी असर इन पर भी पड़ती है, दूसरे लोगों पर भी पड़ती है कि चलो मैं भी करूं। इन लोगों करते हैं देखो कितना मुक्त जीवन जैसा जी रहे हैं। इन लोगों के मुख पर तेज है, कोई सोता नहीं है, देखो सब सुन रहे हैं और इतना तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागो सतो वृत्ते। हम तो सोचते हैं कि असंग यानी कि जो भौतिकता वाली चीजें हैं उसका ही त्याग करो तो असंग त्याग हो जाएगा। नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं भौतिक चीज का त्याग नहीं करना है लेकिन सद उपयोग करना है, सत के लिए उपयोग करना है। सत कौन है? सत तो एक ही है, सत एकम विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी पढ़े लिखे अलग अलग ढंग से बोलते हैं लेकिन अलग अलग ढंग से बोलने में इन लोगों की मर्यादा दिखाई देती है, सत एकम की मर्यादा नहीं दिखाई देती है। हमारी मर्यादा दिखाई देती है लेकिन भगवान तो अमर्यादित है, सर्व कारण कारणम। तो भक्ति में ये पूर्णतया हम समझ सकते हैं लेकिन ये हठीले बालक को अभी तक भक्ति का मार्ग इस कड़े ध्यान से और अपने शरीर पर इतना नियंत्रण लाने के लिए नारद मुनि ने कहा कि बच्चा ताकतवान है, सामान्य बच्चा नहीं है, निकला है तो उसकी ताकत का पूरे पूरा उपयोग कर दो भाई। तो नारद मुनि ने भी इतनी कड़ी शिक्षा देकर उसको भेजा है, बच्चा तू ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं करूंगा भगवान को बुलाऊंगा, तो कितनी दृढ़ता होगी। तो उसी तरह जब हम निषेध के बारे में बात करते हैं तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आ गया, देखो ऑटोमेटिकली आ गए। ध्रुव महाराज के लिए आहार की तो बात ही नहीं थी, अत्याहार तो कहां हो सकता है, कुछ इकट्ठा नहीं करना है। क्या लकड़ी भी लेने नहीं जाते थे? वो जो गिरे हुए पत्ते को खाते थे, कहीं तोड़ने गए हैं नहीं, यदि तोड़ने जाते तो बहुत ध्यान नहीं रह सकता, मन भटक जाता, जाना भी तो अति प्रयास भी नहीं करते थे। और साथ में बात करने वाला कौन था, प्रजल्प हो सकता है ना? अपने आप तो प्रजल्प नहीं कर सकते। उन्होंने भगवान के लिए ध्यान देने के लिए वहां एक कठिन तपश्चर्या का आरंभ किया, वो कठिन निश्चय था, इसलिए पिताजी ने क्या करा और उसकी सौतेली माँ ने क्या कहा वो तो भूल ही गए, नहीं तो गाली देना चालू होता, वो भी नहीं देते बेचारे। ऑटोमेटिकली बंद, और कोई नियम नहीं, कोई आग्रह नहीं, हठीलापन में कोई आगे नियम लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतना हठीला होना चाहिए जो हट नहीं पाते। हम तो हठीले इस तरह के हट जाते हैं तुरंत, इसलिए हम लोग हठीले कहलाते हैं। लेकिन जो हट नहीं पाते वो हठ योगी, ऐसे दृढ़ निश्चय वाला बनना चाहिए। तो यूं देखें, इसके लिए कोई नियम बाकी रहा ही नहीं। ऐसी कठिन तपश्चर्या जो इसका परिणाम ही पवित्रता लाता है, उसका ध्यान निश्चित करने के लिए ही वो भगवान का ही सोचना होता है। भगवान कैसे थे और कैसे दिखाई देते हैं, इनका दर्शन करने की भी सारी माहिती नारद मुनि ने दे दी थी। देखो ये भगवान ऐसे होते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण किए, उनकी अंग की जो प्रतिभा थी उसके सारे लक्षण उन्होंने बता दिया कि इनका ध्यान कर। कोई निर्गुण निराकार का तो ध्यान होता ही नहीं, तो उसके लिए हट लेने की क्या आवश्यकता है। उसका व्यवहार ही, निर्गुण निराकार का व्यवहार ही ऐसा बन जाता है, वो सब कुछ चलता है उसके लिए, तो हट की तो बात ही नहीं, तो दिखावे का होता है। और वहां भी संग त्याग, तो यहां बताया है कि संग किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के संग होते हैं। मानसिक संग भी होता है कि मन में जो भौतिक विचारे होते हैं इनके साथ चिंतन करते रहना, वो भी संग है। किसी भी भौतिकता से संग नहीं, ऐसे विचार जो सूक्ष्म रूप से जब मन में आते हैं और बुद्धिपूर्वक दृढ़ता प्राप्त करते हैं तो सारी भौतिकता से वो छूट जाते हैं, वो संग त्याग। इसमें शरीर के भी, किसी इंद्रियों के विषयों की भी कोई भावना नहीं, कि विषय वासना तो कहां रही। तो ये संग त्याग बहुत बढ़िया लक्षण उसके लिए बनता है। और सूक्ष्म रूप से, आंतरिक रूप से वो निर्लिप्त है। तो ऐसा, ऐसी कक्षा पर, ऐसे स्तर पे आना भी ये चिंतन की ये पद्धति के द्वारा सफल होता है। और सतोवृत्ति, सतोवृत्ति यानी कि ये परंपरा में आए हुए लक्ष्य पर निशाना बनाकर हम ये दृढ़ व्रत रखते हैं। तो परंपरा का मंतव्य नारद मुनि के द्वारा प्राप्त हो ही चुका है कि भगवत प्राप्ति एकमात्र विषय है जो तुम्हारी सारी इच्छाओं पूरी कर सकते हैं। एक ही इच्छा के लिए तू आया है, नहीं नहीं बहुत बड़ी है मैं जानता हूं, वो तो सब सफल हो जाएगी। तो ये शब्द यहां संगतात्मा, संगतात्मा, संगत जो जहां पहुंचा है, गत लेकिन कहां, भगवान के हृदय मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये करने से ही बहुत आसानी से मद गतिनांतर आत्मना बन जाता है। भगवान के मन मत गति, यानी कि मेरे मेरे मन में या मेरे अंतरात्मा में वो एकता पा चुका है।
ये एकता के कारण भगवान आकर्षित होते हैं। जब भक्त ऐसे चिंतन द्वारा सर्वप्रथम अपने को नियंत्रित बनाता है, पूर्णतया अपने वश में बनाता, यानी कि जिसने अपने भौतिक शरीर को या सूक्ष्म मन इत्यादि को भी भगवान के पक्ष में जीत लिया है, इनका चिंतन करते ही ये सब शक्यताएं खुली हो जाती हैं उसके लिए। इसीलिए भगवान का नाम और इनके स्वरूप पर चिंतन, इनके दिव्य गुणों पर हमारा स्वभाव प्रकट करना, यानी कि आत्मा भी भगवान के जैसे दिव्य गुण वाली बन जाती है। तो ये एकता वाला जो संबंध है वो संगत आत्मा कहलाता है, वो भगवान को आकर्षित करने वाला है। जब भगवान भी इनसे ऐसी भावनाओं से भक्त के पास खींचे जाते हैं, तो सारी सृष्टि के नियामक होने के कारण सारी इनसे पैदा हुई पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसमें हवा भी आ गई, सब खींचे जाएंगे। इसीलिए देवता परेशान हो गए, क्योंकि ये तो सब भगवान ने अपने आप को संपूर्ण रूप से ये भक्त के पीछे सब कुछ लेकर दौड़े, यानी कि हमारे लिए कुछ बचा नहीं। इसीलिए उनके श्वास भी रोंद गए, हमारा क्या, देवताओं को भरोसा नहीं है, लेकिन भक्त को भरोसा होता है हमेशा। भौतिक संगति के कारण हमें भरोसा नहीं रहता, वो तो कहते कि हो जीने के लिए हमें हवा चाहिए, जीने के लिए हमें हवा चाहिए, हवा ही रुक गई, भगवान बचाओ। अरे भगवान सारा नियंत्रण करते हैं, लेकिन ये भावना ये बताती कि कितनी उत्कृष्टता से भगवान जो सर्वाकर्षक है वो स्वयं भक्त की भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, ये समझना आवश्यक है। भगवान को स्वयं को आकर्षण होता है, इसलिए भक्ति में हमेशा भगवान की उपस्थिति, मौजूदगी जिसे कहते हैं, उपस्थिति हमेशा संग में ही होती है। यत वक्ता मत यत गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद, तो भगवान कैसे खींचे जाते हैं, वो खींचे जाने के कारण भगवान कहते हैं कि हवा भी मेरे पीछे पीछे आ गई और तुम लोगों के पास, आप डरो मत, डरो मत, डरो मत। भगवान की एक एक कार्यवाही यदि इसमें कभी कभी अपने मोज के कारण राक्षसों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, जैसे कि हिरणाक्ष के साथ लड़ने के कारण शुकर अवतार के हाथ में से गदा छूट गई, ओ देवताओं हाहाकार करे, अभी क्या होगा, गदा चली गई। अरे गदा से थोड़े मरते, एक बाएं हाथ की थप्पड़ से ही मर गया वो, देखो कहां भरोसा। हम भौतिकता में जीने वाले, यदि आज खाना नहीं मिला तो इसीलिए जब गुरुकुल में गुरु हितम के लिए बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, तो कहा है कि यदि गुरु उसको खाने के लिए बुलाने में यदि भूल जाते हैं तो बच्चा जाएगा नहीं, भूखा मरेगा जब तक बुलाते नहीं, ये भी दृढ़ व्रत है। अनुकूल अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, अनुकूल भक्ति। तो ऐसी तपश्चर्या जब हम दृढ़मूर्ति बनकर स्वयं अपना लेते हैं, वो कोई थोपी नहीं जानती, स्वयं अपना लेते हैं, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम स्वयं अपनाते हैं, तो वो भक्ति में आगे बढ़ाएगी। छोटी छोटी चीज में, हाँ आज तो बहुत ठंडी है, गर्म पानी भी बंद हो गया है, चलो नहीं ना हो ठीक है, ओम पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था नहीं, तपश्चर्या का मौका मिला है, उठा लो, हाँ उठा लो। ये तपश्चर्या जब कुछ नहीं होता था इसको स्थापना हो चुकी थी और थोड़े ही भक्त थे, उन्होंने अनुभव किया है, अरे यहां तो एयर कंडीशन न हो तो प्रेसिडेंट भी रूम नहीं स्वीकारता, ये हमने देखा है सुना है। अरे क्या क्या तपश्चर्या, नहीं पैसे बहुत आते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन तपश्चर्या कलयुग में कौन सी करवाए, तपश्चर्या तो वॉलंटरी है ना, ये स्वयं स्वीकार नहीं होते, किसी के थोपे थोपाए पर काम नहीं होता। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदर्शता का सिद्धांत अपने चेलेओं को सिखाने के लिए कुछ करता है, तो वो चेले भी गुरु की रहनी कहनी अपना सकता है, पर आज तो नहीं कुछ और ही है, फिर भी हरि नाम तारक है, फिक्र मत करो, जाओ अपने अपने घर और हरे कृष्ण करो और भगवान येन तेन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेशयेत्। रूप गोस्वामी ने इतनी छूट दे दी है, कह पहले जमाने की बात मत करो महाराज जी, ये तो इस्कॉन 45 साल हो गए हैं, अरे क्या देखो कितनी प्रगति की है, लेकिन हमने पुराने समय में हमने भी वॉलंटरी तपश्चर्या में पसार हुए थे, वो घिसाई आपको नहीं मिलती, हम इसलिए आपके ही आभारी हैं, लेकिन वो हम भूलेंगे नहीं। कभी कभी वो दिन याद आते हैं, हम किसी से फरियाद भी नहीं करने चाहते थे, जो आया स्वीकार है, क्योंकि हम जानते हैं थोड़े समय का है ज्यादा क्यों। प्रहलाद ने तो थोड़े समय में 4 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली, 4 महीना ही बताया, ज्यादा नहीं बताया है ना, ये तो फटाफट हो गए। तो जो है ये साथ यहां संगतात्मा शब्द पर ही ज्यादा श्री प्रभुपाद ने भार दिया है कि सावधान, उसका अर्थ गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा साधा उसका अर्थ है, और भगवान की इच्छा के अनुसार ये सारी पूर्ति हो रही है। भगवान ने यह देवताओं को आश्वस्त कर दिया कि आप फिक्र मत करो, वो श्वास रूंधे वही, ऐसा मैं उपाय करूंगा, तुम घबराओ मत। तो मायावादी तात्पर्य से भक्ति प्रधान ये तात्पर्य बहुत भिन्न होता है, और उसे ही हमें ख्याल में रखना चाहिए। तो सतोवृत्ति सफल होगी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
जय महाराज की।
जय
हरि। महाराज की जय।
ध्रुव महाराज।